ओके, वर्स 64। अब इसमें शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि जो भी कुछ दिख रहा है और जो भी कुछ सुन रहा है इस संसार में, वो ब्रह्म से अलग नहीं है। अब कितनी अजीब बात है, अभी तक वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो अलग है ब्रह्म से, है ना, उसका ऑपोजिट है, और अभी क्या कह रहे हैं, जो हर चीज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, वो ब्रह्म से अलग है ही नहीं, है ना। अभी ये तो बहुत ही, मतलब इट्स अ कंप्लीट पैराडॉक्स, ये है जो बुद्धि को एकदम मरोड़ देने वाली चीज़ है, कि पहले कहते हैं कि संसार अलग है, ब्रह्म अलग है। हमने अभी बात की कि संसार जो है वो जड़ है और ब्रह्म चैतन्य है, संसार बदल रहा है, ब्रह्म कभी नहीं बदलता, और अभी ये कह रहे हैं कि संसार में जो भी कुछ है वो ब्रह्म है, तो ये कैसे होगा, ये कैसे जानेंगे, है ना। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए फिर वही बात आ जाती है कि इसको बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल्स जो पहले भी हम लोगों को इन्होंने कराए हैं, जब हम समुद्र देखते हैं, है ना, हमें क्या नज़र आ रही है, उस पर बहुत सारी लहरें नज़र आ रही हैं, करेक्ट। अब हमारा एक तरीका हो सकता है हम बोलें ये समुद्र की लहरें हैं, है ना, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है देख उनको बोलने का, कि ये पानी है। अभी क्या असली है और क्या नकली है, देखो पानी असलियत है, जो लहर है वो है तो पानी ही ना, हम उसको बोल सकते हैं कि लहर है, लेकिन है तो पानी, और जब हम उसको लहर बोल रहे हैं ऐसे ही हम ब्रह्म को संसार बोल रहे हैं। लहर हर वक्त बदल रही है, अभी आपको दिखेगा एक बड़ी सी लहर आई, अभी देखोगे लहर गायब है, है ना, जैसे संसार आया, संसार में कुछ भी आपने देखा, एक सृष्टि उत्पन्न हुई और गायब हो गई, लेकिन पानी तो हमेशा है। लहर गायब भी हो गई, अगर सपोज समुद्र शांत हो गया और एक भी लहर नज़र नहीं आ रही वहाँ पे, लेकिन पानी तो हमेशा है, है ना, तो जो लहर है वो पानी में ही समा गई, लेकिन जब पानी एक रूप ले लेता है अलग, तो हम उसको लहर बोलने लगते हैं, है कि नहीं। उस समुद्र में पानी ने एक रूप लिया तो वो लहर बन गया, लेकिन है तो पानी ही। अब यहाँ पे क्योंकि अब हम आत्मबोध के एंड में आ गए हैं, तो शंकराचार्य हमें ये ही समझा रहे हैं कि ये संसार में जो भी बदल रहा है वो भी ब्रह्म का ही रूप है। मतलब ये जो सारे शरीर, सारे मन, सारा संसार, पेड़, कुछ भी हमें आसपास नज़र आ रहा है, ये ब्रह्म का रूप है। लेकिन क्यों हमें पहले बोल रहे हैं वो कि ये सब माया है, क्यों, क्योंकि ये टिकेगा नहीं, जैसे लहरें टिकेंगी नहीं, जैसे लहरें बदल जाएंगी वैसे ये संसार में जो भी हमें नज़र आ रहा है वो सब कुछ बदल जाएगा। तो हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जैसे हम लहर में लहर को ना देखकर पानी देखें, है ना, अगर हम पानी देखेंगे तो हमारी दृष्टि बिल्कुल बदल जाएगी, फिर हम ये नहीं बोलेंगे ये छोटी लहर है, ये बड़ी लहर है, ये लहर नष्ट हो गई, ये लहर उत्पन्न हो गई, अरे ये तो पानी का छोटा सा बुलबुला है, है ना। हमारी सारी जो उपाधियाँ हैं वो लहरों के शेप एंड फॉर्म लेके है कि नहीं, हम नाम और रूप में चले गए, जब हम लहरों में आते हैं तो हम नाम और रूप में चले गए ना, जबकि अगर पानी लें तो वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इज दिस क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्म जो है वो हमें इस संसार के रूप में नज़र आ रहा है, अगर हम इसको संसार जैसे देखेंगे तो सफरिंग रहेगी। अगर मैं देखूंगी ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है लेकिन ये मेरा भाई नहीं है, ये अच्छा है ये बुरा है, है ना, तो क्या होगा, तो सफरिंग रहेगी। लेकिन अगर मैं सबको सिर्फ देखूं कि ये ब्रह्म है तो वो सफरिंग ख़त्म हो जाती है, ऐसे सफरिंग समाप्त होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो वो बोलते हैं, ऑल दैट इज परसीव्ड इज ब्रह्म, द इनर्ट द इल्यूजन कैन बी परसीव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द सेंशियस एंड लाइट ऑफ ब्रह्मन। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन है कि जो माया है वो भी हमें कैसे नजर आ रही है, ब्रह्म की वजह से। जैसे लहरें क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि पानी है तभी तो लहरें नज़र आ रही हैं। अगर पानी नहीं होगा तो लहरें नज़र ही नहीं आएंगी, है कि नहीं, है ना। फिर जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं सोने का और ज्वेलरी का, है ना, कि अगर आप ज्वेलरी के 10 पीस रख दो, नेकलेस रख दो, बूंदे रख दो, बैंगल्स रख दो, पैर का कुछ रख दो, छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के रख दो, एक आप देख सकते हो कि हाँ आप उनको अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हो कि ये इयररिंग्स हैं, ये नेकलेस है, ये बैंगल्स हैं, या आप बोल सकते हो ये सब सोना है। अगर आप सोना बोलोगे तो सब एक हो गया, लेकिन आप ज्वेलरी बोलोगे तो वो अलग अलग हो गई, है ना। अब फिर से अगर हम जाएं वर्ल्ड और ब्रह्म, तो जो ज्वेलरी है वो वर्ल्ड है। ज्वेलरी वर्ल्ड क्यों है? आज वो नेकलेस है, हो सकता है कल आप उस नेकलेस को तोड़ के इसकी बैंगल्स बना दो तो नेकलेस कल को नहीं रहेगा, या बैंगल्स को तोड़ के आप उसके इयररिंग्स बनवा दो, है ना। लेकिन सोना हमेशा रहेगा, आप देख रहे हो, सोना हमेशा रहेगा, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। तो वो क्या कह रहे हैं, जो ज्वेलरी है वो इल्यूजन है, वो माया है, वो बदल रही है, वो परिवर्तनशील है, लेकिन सोना नहीं बदल रहा। आप कोई भी शेप दे दो, अगर आप उसको ऐसे ही पिघला के भी रख दोगे तो भी वो सोना ही रहेगा, है ना। तो लेकिन क्या ज्वेलरी बिना सोने के हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। ज्वेलरी को होने के लिए सोना चाहिए, तो ज्वेलरी इज डिपेंडेंट ऑन द गोल्ड, बट इज गोल्ड डिपेंडेंट ऑन द ज्वेलरी? नो, बट ज्वेलरी इज अ फॉर्म ऑफ गोल्ड ओनली, राइट। सो दिस वर्ल्ड, ये जो हमें संसार नजर आ रहा है, ये ब्रह्म का ही रूप है, उससे अलग नहीं है। जैसे नेकलेस गोल्ड का ही रूप है तो गोल्ड ही। अब मैं उसको नेकलेस देखती हूँ या मैं उसको सोना देखती हूँ, ये डिपेंड करता है मेरी दृष्टि कहाँ पर है, ठीक है। Earlier the Acharya had said that the observed is inert, it is untrue, whereas the observer is the sentient, absolute truth. Although the statements may seem contradictory, they are not. After all, the substratum of the observed world isn't that substratum of the pervasive Brahman. अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाने वाली बात है ना। पहले वो बोल रहे थे कि संसार भी जड़ है, उन्होंने यही बोला ना, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड क्या है? जिसको देखा जा रहा है, जो दृश्य है। दृश्य क्या है? संसार है, है ना। और दृष्टा क्या है? दृष्टा चैतन्य है। और वो कह रहे हैं जो दृश्य है वो जड़ है और दृष्टा है वो चैतन्य है। फिर वो कह रहे हैं कि दृश्य और दृष्टा दोनों ही चैतन्य है, क्योंकि वो एक ही हैं, दे आर वन ओनली। ओके, मैं यहाँ बोलूँगी कि इस चीज़ को छोड़ दो, अभी इसमें नहीं घुसो, नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। उनका काम है समझाना पूरा, हर चीज़ एंड तक ले जाना, बट वी कैन ड्रॉप इट। फॉर अस दिस इज़ गुड इनफ टू नो कि जो वर्ल्ड है वो ब्रह्म पे डिपेंडेंट है, वो जड़ है और चैतन्य पे डिपेंडेंट है। ओके, फिर देखो उन्होंने खुद ही बोल दिया लास्ट पैराग्राफ में, इनडीड दिस इज़ अ वेरी एब्स्ट्रूज टॉपिक दैट रिक्वायर्स अनडिवाइडेड मेंटल अटेंशन, एंड दैट इज़ व्हाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस इज स्ट्रेस्ड अपॉन, है ना। क्यों बार बार बोला जाता है कि ध्यान करना ज़रूरी है, प्राणायाम या जो भी आपकी प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल, वो ज़रूरी है ताकि बुद्धि स्थित हो सके, बुद्धि स्थिर हो सके। अगर बुद्धि स्थिर होगी तो ये बात एकदम से समझ में आ जाएगी, एक सेकंड में समझ में आ जाएगी एकदम कि क्या है, है ना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बोलते हैं ना कि अगर सपोज़ आप कलर ब्लाइंड हो तो आपको लाल रंग नज़र ही नहीं आ रहा, कितना भी बोलो ये लाल रंग है, आपको लाल रंग नहीं दिखेगा, है ना, आपको कितना भी समझाते जाओ। लेकिन अगर आपकी सर्जरी कर दी जाए आँख की, आपकी आँख ठीक हो जाए कि लाल रंग दिखने लगे, तो एक सेकंड लगेगा लाल रंग को देखने में, है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं कि अगर आप ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और स्थिर बुद्धि एकदम से इस बात को पकड़ लेगी, फिर किसी को समझाना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो क्रिया योग है वो क्या कर रहा है, वो आपके ब्रेन की सर्जरी कर रहा है एक्चुअली, और कुछ नहीं कर रहा। वो आपके ब्रेन में वो चीज़ें खोल रहा है, ऐसे सेल्स इज़ वन ऑफ द वेज जिससे कि आप उस लाल रंग को देखते ही पहचान जाओ। फिर किसी को नहीं बताना पड़ेगा कि ये हरा नहीं है, हरा अलग है लाल अलग है, आपको देखते ही समझेगा अपने आप। फिर उन्होंने आगे ना एक कहानी बताई है कि एक बार एक आदमी गया महात्मा जी के पास आत्मज्ञान लेने के लिए, तो महात्मा जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो भी प्रवचन सत्संग सुनने लगा वहाँ बैठ के, जो सत्संगी लोग रहते हैं। अब उसमें क्या हुआ, उसके साथ एक लड़की भी आती थी वहाँ पे सत्संग में, बहुत ही सुंदर थी। अब वो लड़की को देख के उसके मन में प्रेम जगना शुरू हो गया, उसकी डिज़ायर्स आ गई, सेक्सुअल डिज़ायर्स आ गई। तो फिर उसने सोचा, अरे भाड़ में जाए आत्मज्ञान कब होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रखा है इसके अंदर, इस लड़की से शादी कर ली जाए। तो उसने लड़की को प्रपोज कर दिया, लड़की ने भी हाँ कर दी। फिर दोनों ने जाके महात्मा जी को बोला कि हम ना आपकी जो भी आपने सिखाया है हम उस पर ध्यान देंगे, लेकिन अभी आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम अपना दोनों साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो महात्मा जी क्या बोलेंगे, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है, जाओ। उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, ये मतलब आत्मज्ञान वगैरह तो सब कुछ नहीं होने वाला, पर कोई बात नहीं, जाओ अब ये इच्छा आ गई है तो, है ना। फिर क्या हुआ, शादी शुरू हुई और थोड़े ही दिनों में जैसा हर शादी में होता है लड़ाइयाँ शुरू हो गई होना। अभी वो जो लड़की इतनी सुंदर नज़र आ रही थी, जब उसकी डिमांड शुरू हो गई, मुझे ये साड़ी चाहिए, ये गहने चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे यहाँ घुमाने नहीं लेके जाते, है ना, हर चीज़ शुरू हो गई। फिर वो भागा अपने गुरु के पास, मुझे इस विपदा से बचाइए, है ना, मुझे इस मॉन्स्टर से बचाइए। तो मास्टर ने बोला, अरे मुझे तो लगा तुमने किसी अप्सरा से शादी की थी। ये डायन कब बन गई अप्सरा। है ना। तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये ज्ञान लेने के लिए भी आपको वही बुद्धि स्थिर और वैराग्य होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जहाँ पे भी आपकी जो सेंसेस हैं अगर वो कंट्रोल में नहीं है, अगर आपने साधना नहीं की है, आप यहाँ पे नहीं टिक पाओगे, नहीं रह पाओगे। आप नेचुरली देखो कहीं पे भी जाओगे, हर जगह प्रलोभन मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, सेंसेस को अट्रैक्ट करने की चीज़ें मिल ही जाएंगी वहाँ पे। तो आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों पे जाने लगेगा। एक और आई रिमेम्बर, जब गुरु माँ ये वाला या पता नहीं कौन सा वाला सेशन कर रही थी, तो उन्होंने बोला था एक बार अपने उसमें कि लोग आए तो हैं ऋषिकेश, वो ऋषिकेश में लेती हैं ये सारी चीज़ें ना, कि लोग आते हैं ऋषिकेश, उसके बाद देखो तो कह रहे हैं अच्छा नहीं सेशन तो होगा, यहाँ पे हमें शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग चलते हैं पहले। तो शॉपिंग करने चले गए हैं, फिर सोच रहे हैं चलो अपने बच्चों को यहाँ भी घुमा लें वहाँ भी घुमा लें। कहते तुम यहाँ पे आत्मज्ञान लेने आए हो या घूमने या अपने टूर पे आए हो, तो वही बात है ना। तो आप गए हो आत्मज्ञान लेने, लेकिन वहाँ पे शॉपिंग के बहुत अच्छी चीज़ें दिख गई तो आप छोड़ छाड़ के वहाँ घुस गए, वही बात है। तो वो मन जिसमें वैराग्य नहीं है, उसको ये समझना कि संसार माया है बहुत मुश्किल है, वो नहीं समझ सकता, है ना। उसकी जो सेंसेस हैं उसको माया की तरफ ही आकर्षित करेंगी, वो वहीं भागेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि कितना भी मायावी हो ये जो संसार है, नो मैटर हाउ इल्यूजरी द वर्ल्ड इज़, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ब्रह्म ही है। जो दृश्य है वो भी ब्रह्म है और जो दृष्टा है वो भी ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म ही है। यहाँ पे इन्होंने बोला है द ऑब्जर्व्ड इज़ ब्रह्म एंड द ऑब्जर्वर्स इज़ ब्रह्म। तो अगर आपको ध्यान हो, एक कृष्णमूर्ति जी का लाइन है कि ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड, इट्स अ वेरी फेमस कोट विच एवरीबडी कोट्स फॉर कृष्णमूर्ति, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड। वो यही चीज़ है, एग्जैक्टली यही चीज़ है। फिर वो कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भक्त है वो अपने आप को भगवान से अलग मानता है ना, कि मैं अलग हूँ और भगवान अलग है। वो अपने आप को छोटा मानता है, वीक मानता है, और भगवान को मानता है कि वो बहुत बड़े हैं, वो जानते हैं सब कुछ, वो ईश्वर हैं। लेकिन जो रियलाइज्ड, जो एनलाइटेंड है, वो कैसे देखता है? उसकी जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है, वो ये है, वो सब में भगवान को देखता है और खुद में भी भगवान को देखता है। उसके लिए हर जगह भगवान है, ये नहीं कि वो खुद ही भगवान है, हर कोई भगवान है। देर इज़ नथिंग अदर देन गॉड, देर इज़ ओनली गॉड, ओनली गॉड इज राइट। एंड देन हाउ डू दे सी ब्रह्मन? एवर ब्लिसफुल, एवर कॉन्शियस, एटर्नल, नॉन डुअल एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। नॉन डुअल मतलब जिसको कि अलग नहीं किया जा सकता, जिसके दो भाग नहीं किए जा सकते, वो एग्जिस्टेंस है। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है डुअलिटी और नॉन डुअलिटी की। देखो डुअलिटी में क्या होता है, अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे कि संसार है और ब्रह्म है, जड़ है और चैतन्य है ना। और भक्त क्या बोलता है कि मैं हूँ और भगवान है। और यहाँ पे अद्वैत ट्रेडिशन में जब हम आते हैं, अद्वैत का क्या मतलब है कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, देयर कैन नॉट बी टू, नॉन डुअलिज्म। मतलब ब्रह्म और संसार, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, दृश्य और दृष्टा, वो एक ही हैं। लेकिन हम उसको एक नहीं बोलते, वी डोंट से वन, वी से नॉन डुअल, वी से अद्वैत, कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। देखो जैसे आप, हमने जैसे ज्वेलरी का एग्जाम्पल लिया, आपने नेकलेस को देखो, आप एक सोने का नेकलेस लो। अब एक तरीका है कहने का ज्वेलरी अलग है और गोल्ड अलग है, लेकिन देखा जाए तो एक ही चीज़ है ना, और एक भी नहीं है, क्योंकि गोल्ड भी है और शेप भी है, तो इसलिए हम उसको नॉन डुअल बोल देते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड राइट। द गोल्ड कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द ज्वेलरी, द फॉर्म कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द गोल्ड। अब हम ज्वेलरी निकाल सकते हैं गोल्ड में से, क्या फॉर्म निकाल सकते हैं? अगर हम उसको पिघला के भी रखेंगे तो भी एक कोई फॉर्म तो रहेगा ना। सो दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर देयर एंड दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, दैट इज नॉन डुअल। और इसको ब्रह्म ज्ञान बोला जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान है कि नॉन डुअलिटी। पहले आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का क्या मतलब है कि अभी तक क्यों आत्मज्ञान ज़रूरी है? अभी तक मैंने क्या सोचा कि मैं ये शरीर हूँ और ये संसार अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। सबसे पहले तो हमारी ये थिंकिंग है अभी तक। आत्मज्ञान क्या बताता है कि नहीं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर के पीछे जो ब्रह्म है वो हो। ये हमारा पहला स्टेप है आत्मज्ञान का। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है कि जो ब्रह्म है वो ही ये शरीर बना हुआ है। और सिर्फ यही शरीर नहीं, जितने भी शरीर हैं, जो भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, हर चीज़ ब्रह्म ही है। दैट मीन्स नाउ आई एम नॉट ओनली दिस बॉडी, आई एम ऑल द बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, आई एम एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ ये ही नहीं हूँ जो मैंने अपने आप को ये एक माना हुआ था, सब कुछ मैं ही हूँ। पहले सब कुछ मैं कैसे हूँ वो जानकर जो शून्य है, और उसके बाद पूरा का पूरा जो भी सृष्टि भी है और जो उसके पीछे भी है, हर चीज़ मैं ही हूँ, वो होता है ब्रह्म ज्ञान। लेकिन हम हमेशा आत्मज्ञान तक जाते हैं। आपको आत्मज्ञान, वो भी खुद से ही होता है, लेकिन आत्मज्ञान तक लेकर जाया जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान अपने आप होता है, जब भी कृपा होती है अपने आप होता है। बस ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बुद्धि से कि होता क्या है, ठीक है।